हल्दी परिक्रमा हुई, उसमें स्त्री पुरुष हाथ उठा सकते। जब हाथ उठाते कीर्तन करते थे केवल हाथ ही हाथ दिखता, और जब नहीं तो केवल भेड़ बकरी, किसी को ऊंट, किसी को कुछ, किसी को पेड़ पौधों से भी जन्म मिले हैं। हृदय में अंदर में आत्मा एक ही समान है, तो हम लोग पूरे करते हैं। सबके अंदर में कुछ प्रेम है, किंतु यह प्रेम कुछ विकृत रूप में है। ऐसा कौन है जो किसी की सेवा नहीं करता? ऐसा कोई जगत में है? कोई भी नहीं है। कोई प्राणी भी नहीं है जो किसी न किसी रूप में किसी से प्रेम और सेवा करता है, किंतु वह प्रेम विकृत है। हम अपने शरीर से भी प्रेम करते हैं, किंतु यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। हम इस विषय को नहीं जानते ये प्रेम सीधा किसके प्रति करनी चाहिए। हम भगवान को भूल करते ही जगत में अनंत काल से जब से पहली सृष्टि हुई इसका कोई हिसाब लेखा जोखा है, तभी से हम हटके हुए। भगवान का भूलने से ही हम ये कोटि कोटि तरह तरह की जोनियों में निकृष्ट और उत्तम जोड़ी, यहां तक ही ब्रह्मा तक हम पहुंच जाते हैं। कभी इंद्र बन जाते हैं, कभी कूच बन जाते हैं। आज भगवान की बड़ी कृपा है कि हम लोग मनुष्य का चोला पहन करके यहां पर कुछ समझ रहे हैं, कुछ शास्त्र संग भी कर रहे हैं। कोई ये कह सकता है कि अर्थ के द्वारा हम सुखी हो सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट से देखो, सोने की लंका वाले रावण से देख लो, और सब प्रकार का पद पाने वाला यज्ञदस्यु से देख लो। दिन में मरू नहीं, रात में नहीं मरू, किसी के हाथ से नहीं मरू, किसी मनुष्य से या किसी के भी, जब तक हस्तक से नहीं मरू। और आवास संपत्ति का मालिक इंद्र जी की सेवा कर रहे हैं, वरुण जी की सेवा कर रहे हैं, देवता लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, और वो सुखी हुआ नहीं? सुखी हुआ? भगवान को बोल करके कोई नहीं सुखी हो सकता। ये इसलिए परिक्रमा हम लोग बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम आओ खाने पीने की हम सब व्यवस्था, सारी व्यवस्था। तीन महीने तक चावल की इच्छा करते हैं हमारे सफल ब्रह्मचारी सामने, करीब करीब 1-1.5 हजार मन चावल की इच्छा से आता है। सब्जी आती है, तेल आते हैं, घी आता है, सब कुछ आता है। कभी और व्यवस्थाएं है ना, 15,000-20,000 आदमी की व्यवस्था करना सहज नहीं है। इसमें विदेश से लोग आते हैं, यहाँ से घनी मनी कुछ देते हैं। ये दिल्ली वाले भी बहुत से ऐसे उदार आदमी हैं जो कुछ अधिक देते हैं, 40-50-50 हजार लोग देते हैं, इसी ये परिक्रमा चलते हैं। बंगाल में जिनके यहाँ से ये सब लाते हैं उनसे एक पैसा की जो दे देते हैं, बड़ी सारी परिक्रमा की व्यवस्था करते हैं। इसलिए उन लोग देखते हैं और श्रद्धा पर लोग देते हैं, और इसलिए चलते हैं। क्यों? इसीलिए इसमें जीव का कल्याण है। भोला भट्ट का जीव भगवान को स्मरण करके, भगवान का कीर्तन करके इस जगत में यदि कोई खुद से भी जैसे भी कैसे वृंदावन धाम में, नौतिक धाम में, जगन्नाथपुरी में, अयोध्या में भूले भटक करके भी पहुंच जाए, भगवान का नाम कीर्तन तक जरूर सुना होगा। ये कानून में पड़े भले ही न कर सके तो भी वो काम करेगा। एक आदमी मान लो कि कोई बीमारी का मरीज है और वो बेहोश हो गया और उसको इंजेक्शन दे दिया, तो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? मुंह तो भी अपना काम करता है। एक आदमी को सांप काट दिया, वो मरी गया, फिर मुंह से आ गया, तब मंत्र का दिया होगा, जब उठा लिया। तो ये मंत्र मणि औषधि जिस प्रकार से नहीं जानने पर भी काम करती है, इस तरह से भगवान का नाम, भगवान की कथा खुद खुद करके भी जान बुझ करके नहीं हो, अनजान में भी यदि वहां चला जाए और काम में भगवान का नाम पड़ गया और वो भगवान का नाम कर दिया तो समझो जिससे उसका जीवन पूरा जाएगा। भक्ति का बीज आ गया, समझो और ना समझो। ऊपर से देखने पर पाप करने वाला भी व्यक्ति उसका पाप सब ध्वंस हो जाता है उस एक नाम के करने से। अजामी सदाचारी ब्राह्मण और वो क्या किया, अपने पिताजी के लिए हवन करने के लिए जंगल से लकड़ी बटोरने के लिए गया इकट्ठा करने के लिए। और वहां एक बेटा को एक दूसरे नीच जाति की शुद्धानी को एक शराब पीकर और उसे क्या दुराचार करते हुए देखा, कंट्रोल नहीं कर सका अपने मन को। एक ब्राह्मण गायत्री मंत्र करने वाला, माता पिता की सेवा करने वाला भी अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर सका। बड़े बड़े ब्रह्मा और देवर्षि लोग भी मन को कंट्रोल में नहीं कर पाते, नहीं कर पाया। जितना वो सोचता उसको दबाने की उतना वो आग बढ़ती जाती, काम की तो दिया। इसके बाद में वो स्पेशल अपना घर का सारा सामान चोरी से दे करके और उसी के साथ में चला गया और वो विष्णु से जैसा व्यवहार करने लगा। पैसा आए कहां से उसको देने के लिए, चोरी डकैती बदमाशी मर्डर करके भी रुपया पैसा मांगा, कितना दुष्ट और दुराचारी हो गया। अंत में उसे 7 संतान मिली, 8वां संतान जब वो एक लड़का पैदा हुआ उसका नाम नारायण रख दिया। कैसे रख दिया, उस संस्कार वर्ष हिंदू जाति में ऐसा होता था, मन का नाम आदि रख दिया। एक वो नारायण नाम रखने के साथ ही साथ उसका भगवान नाम हो गया, किंतु उसका कितना फल हुआ वो नहीं समझ सका। समझेगा मृत्यु के हम रोज बुलाता नारायण बेटा आ जा नारायण नारायण, और उसको नारायण कहता है चुंबन करता उसका मुंह, अब स्नेह करता उसको, सब प्रकार से स्नान इत्यादि कराता और नारायण नारायण। ये क्या हुआ, उसका भक्ति का अभ्यास हो गया। और जब मृत्यु का समय आया तो डर के मारे देखा दूतों को और देखा के डर के मारे नारायण नारायण नाम उसके मुख से अपने बेटे का निकाला। किंतु हुआ क्या, जब के दूत आए तो उसके प्राण को निकालने लगे शरीर से, और उस समय भगवान के दूत आए ना रा यम चार रखा, ये भगवान के दूत वहां से और उनको मना कहिए तुम इसको कहां ले जा, तो जम के पास इसको दंड देने के लिए, क्यों इससे बड़ा भारी दुराचार था। ब्राह्मण होता कि अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बेटे को छोड़ दिया, बेटियों को छोड़ दिया और इस वेश्या के साथ में दुराचार किया, कितने लोगों को मारा है, मर्डर किया है, कि बड़ा भारी जघन्य पापी है, इसको हम दंड देंगे। उन्होंने कहा कि तुमको जाग ज्ञान नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं, किसने नारायण नाम हरि नाम कृष्ण नाम उच्चारण कर दिया, राम नाम उच्चारण कर दिया, उसके भूत भविष्य और वर्तमान जितने भी पाप हैं सब खत्म हो गए। इधर तो उसको नहीं ले जा, मैंने कहा नारायण का नाम नहीं किया, अपने बेटे का नाम किया, हरि नारायण नाम है ना, ये आभास भगवान का नाम हो गया, शुद्ध नाम तो नहीं है किंतु आभास हो गया, इसे इसके पारे सारे पाप थे। अशुद्ध नाम करता तो इसको भगवान का प्रेम मार करके फटा दिया विष्णु के भी, और ये सब वो सूता रहा, प्राण तो उसके शरीर से गए नहीं, सूता रहा। अब उनको गुरु मान लिया कि हमने अपने बेटे के लिए नारायण नाम किया और मैं मृत्यु से पार हो गया और भगवान के विष्णु के दूतों को दर्शन किया, उनके चरणों को छूना चाह, उनका ध्यान हो गया। इसके बाद में वहां से उठ करके गया, घर बार सब छोड़ दिया, वेश्या को भी छोड़ दिया, बेटों को भी छोड़ दिया, पुराने वाले थे उनको भी छोड़ दिया, और कहां गया हरिद्वार में, हरि का स्वाद में गया, वहां गंगा नदी में स्नान करके और भाई जो उनसे नारायण और प्राप्त किया था नाम, और उसी नाम को जबते जबते उसके सारे और जो संस्कार हुए थे वो सभी पूरे हो गए। उपस्थित होकर उनको मालूम नहीं था कितना दूर है, भगवान का नाम करने वाला ऊपर से दुराचारी भी पड़ता है, बंद करो भाई दुराचार्य का भी पड़ता है, उसकी निंदा मत करो, उसके साथ सारे पाप जल चुके हैं, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हारी आंख अंधी है, तुमको भी आत्मा का विचार नहीं आता, इसे भगवान का नाम अभी सुदुराचारो भजते माम अनन्यवाद। खुशा नहीं मानो क्योंकि धीरे धीरे उसके सब पाप और सदाचार संपन्न हो जाएगा, भगवान का आनंद भक्त हो जाएगा। इधर उबरते तो तुम तुम्हारे देखने की दृष्टि नहीं आएंगे। इसलिए यदि कोई साधु महात्मा या भक्त भगवान का नाम करता है उसके सारे पाप चलेंगे और निश्चित कल्याण होगा। ये तो अशुद्ध नाम करने से हुआ, अशुद्ध नाम करेगा तो उपकार नहीं। इसलिए हमारा जन्म का हमारे जन्म की सफलता कहाँ है? धन कमाने में नहीं, पुलिस में सहायता नहीं कर सकता, पॉलिटिक्स में नहीं है, राजनीति में नहीं है। घर गृहस्थी अच्छी तरह से कर लिया, वेदों में शास्त्रों में ये कहा गया, वेदांत सूत्र में आप माता पिता की सेवा करते रहे, अपने स्त्री के प्रति जो व्यवहार होता है वो करते रहे, पिता के प्रति जो सेवा की भावनाएं करते हैं, संसारिक उपकार है उसको करते रहें और भगवान का भजन नहीं करे तो फिर भी नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? भगवान माता पिता के माता पिता के माता पिता, वे पति के पति के पति के भी पति, बंधु के बंधु के बंधु के भी मूल बंधु है कृष्ण ही है। इसलिए कृष्ण का जो भजन नहीं करते चारों वर्णाश्रम में यदि कृष्ण नहीं करे स्वर्म कई के और हुए बंगला में इतने चारों वर्णाश्रमी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें, कोई संसार को छोड़ करके दंड लेकर के और शिवोहम शिवोहम या ब्रह्माष्टमी ब्रह्माष्टमी ये कहे तब तो अस्वीकार, मैं ही वही ब्रह्मा हूं, सब कुछ करता रहे तभी नर्क में जाना पड़ेगा, जरूर जाना पड़ेगा। और दुराचारी को करके भी गृहस्थ में रह करके भी यदि भगवान का नाम करता है कृष्ण नाम करता है तो उसने सब जन्म सफल कर दिया। संसार में भगवान ने हमको इसीलिए भेजा कि हम भूले भटके हैं, हमारा नाम करे, हमारे धाम में जाए, किसी प्रकार से ठाकुर जी की सेवा हो जाए, बस इसलिए हमारे एक गलत समझो। जब खूब सफलतापूर्वक हम संसार को चला रहे हैं, पितृ पुत्र परिवार का पालन कर रहे हैं, ये हो गया सर मैं समझता क्यों, ये धर्म सफलता तब होगा जब बिना कराते हुए भी पांडव जैसा के सकता द्रौपदी जैसे नारी बनो, पांचों पांडव जैसे भक्त बनो, भोगियों जैसे गृहस्थी का काम करो, बलराम महाराज जैसा गृहस्थ हो, अम्बरीश जैसा गृहस्थ बनो, तब तो ये ठीक है। और गृहस्थी करते हुए भी भगवान का भजन स्मरण नहीं करते हैं, जीवन के निर्वाह में ऐसे लग गए और संसार में फंस गए कि वो बेकार काम ऐसा नहीं होना चाहिए। आजकल टीवी और कैंसर घर घर में धूप करके प्रवेश करके छोटी छोटी लड़कियां 8-10-12 वर्ष की लड़कियां भी टीवी देखने लगती और देखती क्या है, जो गंदे विचार होते हैं जगत में इधर उधर में हो रहे हैं वो समझते हैं कि हम लव मैरिज कर लेंगे और सुखी हो जाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां भी टीवी होता है इसमें सब देखती है, देखकर के क्या होता है वो किसी से प्रेम करने लगती है। जब वो याद रखो छोटी बच्चियों के लिए भी कह रहे हैं कभी खबरदार वाइफ फ्रेंड या गर्ल फ्रेंड मत करो, उनका जीवन बर्बाद होता है जीवन भर के लिए। माता पिता जहां देख सुन करके शादी करते हैं वहां रह करके और भगवान का भजन करते हुए सारा जीवन मिलजुल करके चलो, ऐसा सोचा। ऐसा नहीं जो लड़कियां टीवी और देख करके और किसी से अभी छोटी अभी 12-14-15 वर्ष की लड़कियां हैं वो भी ऐसा विदेश हो जाता करने, माता पिता का कोई अंकुश उनके ऊपर लोग होता है मानती नहीं है। इसलिए ये सब चीजें मिलती सरकार तो में माता पिता की सेवा होनी चाहिए, सास ससुर के प्रति की नजर और भगवान की, ऐसा तो ठीक है। अंकुश रही सदाचार रही यदि व्यक्ति रहेगा तो भगवान में कैसे जाएगा, उसकी रुचि कैसे जाए। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए हमारा उद्देश्य जीवन का ये होना चाहिए हम भगवान का भजन करके इस जग जीवन से हम इस माया जग संसार से हम उठे हो जाए। संसार को देखा इसमें बहुत से लोग हैं 50 वर्ष के कोई 60 वर्ष के कोई 70 वर्ष के हैं, कोई 80 वर्ष के भी होंगे, बुढ़िया होंगे। क्या संसार में देखा? जीवन पूरा हो गया, अरमान करोड़ों की संपत्ति है, अरमान पूरा हुआ नहीं हुआ? जितने वृद्ध होते जाएंगे इंद्रियां दुर्बल होती जाएंगी और अंत में कुछ कर नहीं सकेंगे, मन ही मन में वो करेंगे। भाइयों सचित हो गति भक्ति बड़ी सहज बुद्धि है। अभी नॉर्थ में मैं गया था, वहां पर एक जगह एक प्रसंग आया भक्ति का। क्या प्रसंग आया? रामचंद्र जी वन में भ्रमण करते करते पिता का आदेश पालन करने के लिए लक्ष्मण और सीता को लेकर के बहुत से लोगों में गए, विशेष करके गंगा को पार करके प्रयाग में आए और द्वार ऋषि से मिले, चित्रकूट में गए, भरत जी से देख ली होने के बाद में वो और इधर बंगाल तक चले गए। वहां एक स्थान है बहुत ही रमणीय, हम लोग परिक्रमा में वहां पर जाते हैं। तो वहां पर लक्ष्मण जी ने गंगा के तट पर बड़ी सुंदर एक कुटी बनाई, जैसे पंचवटी है आप लोग देखे होंगे गोदावरी के तट पर, वैसे बहुत रमणीय स्थान है। आम के बगीचों से भरा हुआ, कोकिल सब समय कुकुह करती रहती है और सब समय हरियाली छाई रहती है। पर्वत का एक विशाल पेड़ था, उसी के अंदर में लक्ष्मण जी ने कुटी बनाई। राम और सीता लक्ष्मण जी रहने लगे। एक दिन की बात है कि लक्ष्मण जी कई फल फूल लाने गए थे और सीता जी वहां पर बैठी थी। राम राम ने सीता जी की तरफ में देख करके कुछ मुस्कुरा दिया। सीता जी ने राम से पूछा, प्रियतम हंसने की कोई बात नहीं थी, मुस्कुराने की बात नहीं, आपने मेरी तरफ में देखा और मुस्कुरा दिया, इसका तात्पर्य देखते हैं किस लिए? तो उन्होंने कहा उत्तर दिया, देखो दो बातें हैं, मैं अभी चलूंगा अयोध्या में लौटूंगा 14 वर्ष के बाद, कुछ दिन हम लोग रहेंगे और उस समय में तुमको कोई एक बिना काम का ही काम, बिना किसी अपराध के, बिना कोई दोष के तुमको घर से निकाल दूंगा, तुम बल में चली जाएगी, निकाल देंगे लक्ष्मण को कह कर, और तुमको वाल्मीकि जी के आश्रम तक ले जाएंगे और उस समय तुम हमारे बिना में रोटी रोटी एकदम बेसुध हो जाएगी। उस समय वाल्मीकि जी आएंगे और अपनी बेटी बना करके अपने आश्रम में पास में स्त्रियों के कुटियों में तुमको रखते, वही बात तुमको दो लड़के हैं, मैं तुम्हारे दिनों में अयोध्या में रहूंगा किंतु चैन से देता हूं और उसमें मैं तुम्हारी मूर्ति की पूजा करूंगा घर में रहकर। तो हुआ ऐसा ही, कैसे हुआ? जब रामचंद्र जी वहां से लौटे वन से राज्याभिषेक हुआ, भरत जी ने भरत जी को उन्होंने उनसे राज्य लेकर के और वहां पर राजा बने, 14,000 वर्ष तक राज्य किया, 11,000 वर्ष। इसके बाद में एक दिन उनके खौफिया पुलिस ने CID ने उनसे कान में आकर के कहा कि प्रभो प्रजाओं में कुछ कानाफूसी चल रही है, सीता जी रावण के यहां कितने महीने रही और आपने उनको अंगीकार कर लिया, आज एक भोगी अपने स्त्री को 2 लाख देकर के घर से निकाल दिया, मैं राम नहीं हूं, तो अभी रात हो गई, अभी 8 बजे तक कहां थी, मैं तुमको नहीं रहा, मैं राम नहीं और उनको घर से निकाल दिया, 2 लाख सीट पर लगा दी। ऐसे ही कहा खुशी चल रही, राम ने सोचा हमारे ऊपर में कलंक आ रहा है, इसको दूर करना चाहिए। ये भगवान की लीला है। इसके बाद में लक्ष्मण जी को बुला करके कहा, जैसे सीता जी से कहना जो आपकी इच्छा थी, जो जहां पर पहले वनवास के समय में ऋषि पत्नियां थी उनको कपड़े लत्ते अलंकार देंगे, तो आप कपड़ा लत्ता अलंकार लेकर के चलिए, कल हम करेंगे। इस तरह से बांधा बना करके ले गए। जबकि वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास में पहुंचे गंगा के तट पर, उस पार में लक्ष्मण जी ने कहा, भाभी एक कठिन राम की बात को आपसे बतला रहा हूं। रामचंद्र जी ने आपको सदा के लिए छोड़ दिया है, अब आपको मैं यही छोड़ करके मुझे लौटना है। यह सुनते ही बेहोश हो गए। यदि छोड़ा था तो लंका में छोड़ देते, यहां क्यों छोड़े। मूर्खित हो जाने के बाद में लक्ष्मण रोते रोते लौट गया अयोध्या। उनको रोता हुआ इस प्रकार से लेकर के मूर्खित हो गई वाल्मीकि जी का आश्रम पासी में किसी लड़के ने बदलाया, जो सीता जी कोई बड़ी सुंदरी महिला वो वहां पर रो रही है, और रो करके वाल्मीकि जी पहुंचे अपने शिष्यों को लेकर, पानी उनका छिटा दिया। बहुत देर के बाद में कुछ होश आया, बेटी तुम ऐसी क्यों करते, मैं जानता हूं सब कुछ, तू मेरी बेटी अब है, चलो हमारे आश्रम में, मैं तुम्हें बेटी की तरह, मैं सब कुछ जानता हूं, कहने की कोई जरूरत नहीं। आश्रम में लगे कुछ दिनों के बाद वहीं पर बेटे शो हुए, लव कुछ ना रखा गया। अब सीता जी का तो इस प्रकार से समय कटता, अपने बच्चों का पालन पोषण करती, बड़े बड़े हो गए, उनको धन विद्या इत्यादि सब सिखलाती, और वाल्मीकि जी भी उनको स्नेह करते, हरि कथा भगवान की कथाएं सब सुनाते, और इसी बीच में उन्होंने रामायण की रचना की और बच्चों को भी सिखलाया। इधर रामचंद्र जी की इस बात पर इनका तो समय तब तक रहा है, कैसे अपने बच्चों के साथ में है, वाल्मीकि जी के पिता के रूप में उनको कथाएं सुनाते हैं, उनका दुख बांट लेते हैं। रामचंद्र जी का दुख बांटने वाला कोई है, कोई है, इन्हें विपरीत में दिन रात चलते रहते हैं, उनको कोई शांत होना देता, किससे मन की बातें खुल करके न हर से, न लक्ष्मण जी से, न हनुमान से, किसी से। एक टाइम गुरु जी से बोले, जी गुरु जी आप ऐसा कीजिए कि एक जगह में काम हो जाता, जगह के लिए आदेश दीजिए, मैं जगह और आप ही जगह कराए, मैं बेतुल जगह करने के लिए योग्य नहीं हो, तो इसमें भक्ति की बातें हैं ये बतलाऊंगा, पीछे जगह नहीं कर सकते, इसलिए यदि यज्ञ कर सकते हो सीता जी को बुलाओ, तुलना हटे के लिए सीता जी के साथ में यज्ञ होगा, गृहस्थ का अधिकार अकेला नहीं, वो अर्थांगिनी है, जाओ ले आओ, तो ये तो नहीं कर सकता, फिर भी मैं यज्ञ करना चाहता, नहीं कर सकता, सीता जी को नहीं ला सकता, किसी दूसरी स्त्री से शादी कर दो, तुम्हारे पिताजी की 360 रानियां थी, अभी भी तुम चाहो तो हजारों लड़कियां तुमको मिल जाएंगी, तुम शादी कर लो, नहीं ये भी नहीं करना है, दूसरी शादी नहीं करना, मैं यज्ञ नहीं कर सकता, नहीं गुरु जी फिर से हमको यज्ञ करो, ऐसा करो कि सोने की सीता की मूर्ति बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा की जाए, और वो तुम अपने बाएं तरफ में रख सकते कर सकता हूं, ठीक है ऐसा है। तो जैसे यज्ञ करते थे और सोने जी इत्यादि यज्ञ, तब सीता जी की सोने की मूर्ति बनती, और रामचंद्र भगवान ही जिसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वशिष्ठ करा रहे हैं, जैसे व्यक्ति उसमें प्राण का संचार हो जाता है। यदि भक्तों शिव विग्रह को ला करके और उनकी प्रतिष्ठा करती हैं, करते हैं, तो वो बातें करती हैं वो मूर्तियां, जैसे सनातन गोस्वामी से बात की और सब देखा जाता है शास्त्रों में, यहाँ वृंदावन में मदन मोहन का देखा जाता है, गोविंद जी का देखा जाता है, वो चलती हैं, चलती हैं, बात भी करती हैं अपने भक्तों से, तो उनकी वो नहीं चले नहीं होगी, उसमें प्रार्थना सीता जी प्राण आ जाता। एक समय की बात है, रामचंद्र जी नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे, तो उस समय में सोने की सीता बनाई गई थी, अब इनके बच्चे अभी 9-10 वर्ष के या 11-12 वर्ष के हो गए हैं, लोग वो रामायण को कंठस्थ कर दिया था, और नाना प्रकार के स्वर से उसमें मूर्छना स्वर और औसत स्वर इतना सुंदर गाते थे और बोली भी इतनी मधुर कि कोई भी सुन करके मुक्त हो जाए। और रूप कैसा, राम का है ना, और सीता जी उनका जैसा रूप। अभी हम बच्चे हैं, राम तो कुछ बड़े हो गए हैं, 11,000 वर्ष होने पर भी रामचंद्र जी की मूछ नहीं आई थी, ये समझो। आजकल को जो भगवान बनते हैं ना वो सभी कुछ सफेद हो जाता है, ऐसे बात नहीं, बच जाते हैं, दांत टूट जाते हैं। और रामचंद्र जी कृष्ण जी या भगवान का कोई भी अवतार में मूछ तक रेखा तक नहीं आती, दांत नहीं टूटते, बुढ़ापा का कोई लक्षण नहीं होता, केश नहीं पड़ते। 11,000 वर्ष की उम्र होने पर भी रामचंद्र जी कैसे लगते थे, मानो 12, 13, 14 वर्ष के अभी सुकुमार। और ये उसे भी कम उम्र, इसमें जवानी माधुरी है और सुंदर रूप सबके लिए आ रहा है। और ऐसा सुंदर कीर्तन करे रामायण का, वाल्मीकि का। अभी हम लोग देखते हैं ना कभी कभी राग इत्यादि लेकर के तुलसी की तरह रामायण की का गान होता है, कितना सुंदर होता है। तो इस तरह से कीर्तन कर रहे थे और बाई चांस वो राम की सभा में पहुंचे। रामचंद्र जी का सवेरे का यज्ञ हो गया था, तो लोग विश्राम कर रहे थे खा पी करके, दो बार का समय, और उसी समय में तथा वाचक तथा पाते थे। किंतु इसका कीर्तन सुन करके रामायण का सब लोगों ने वो सब बंद कर दिया। रामचंद्र जी को पता लगा, वो सारी सभा बैठी और ये दोनों वीणा चंद्र पर खड़े होकर के राग आवाज करके ऐसा कीर्तन किया, विशेष करके सीता जी का वनवास का। वो नहीं जानते थे ये राम हमारे पिता है और सीता जी, वही सीता जी मेरी भैया है, वो भैया जानते थे और वाल्मीकि को गुरु जानते थे और कुछ नहीं जानते। तो रामायण पाठ जब करते तो राम के आंखों में आंसू आ जाते, कौशल्या माता कैकेयी सुमित्रा सभी की आंखों में आंसू, लक्ष्मण हनुमान सब रोने लगते। एक दिन की बात है, रामायण कहां तक शुरू हो, ये लंका कांड इत्यादि हो गया, सीताजी का वो जो वो काव्य हो गया था और सीताजी का केवल वनवास का बाकी था। तो बच्चे गा रहे हैं, सभी लोग रो रहे हैं। राम ने कहा कि बड़े सुंदर है लक्ष्मण, जरा जाओ पूछो तो ये किसके बेटे हैं, जरा पूछो उनका परिचय क्या है। कोशिश कर रहे थे, ये तो राम के समान जिसका रूप है, ऐसे ही लगते हैं जैसे राम छोटी अवस्था में था, चाहे कई समझना सभी लोग का है। किंतु किसी को पूछने का वो ये नहीं था, किंतु राम ने लक्ष्मण जी को भेजा और सोने के थाल में अशाखियां मोतियां जवाहरात ये सब बात करके उनको दिया, इन बच्चों को पुरस्कार दो और इनका परिचय पूछ करके आओ, इनके माता पिता कौन है। लक्ष्मण जी रहे पूछने के लिए, तो पहले तो उन्होंने उपहार देना चाहा सोने वाला सोने के थाल, सोने से हमें क्या मतलब है, हम गुरु के आश्रम में रहते हैं, वहीं पर केले और फल मूल खाते हैं, वहां पर नदी है गौतमी, उसी से हम पानी पी लेते हैं और गुरु जी के बगीचे में वो केले के लिए हैं, उसी से अपना कपड़ा बना लेते हैं छाल से और हम पहन लेते हैं, हमें इस सबसे कोई भी मतलब नहीं, लौटा के नहीं लिया। जब लौटा दिया तो इनकी श्रद्धा बढ़ गई, देखो फिर इसको धन संपत्ति में कोई भी लालच नहीं है। तो फिर उन्होंने पूछा, बेटे ये बताओ तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, परिचय तुम्हारा। आप तो शास्त्रज्ञ हैं, साधु संतों का ब्रह्मचारियों का पिता माता का नाम नहीं पूछना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, तुम्हारे गुरु कौन है। ऐसे गुरु निष्ठा होनी चाहिए, गुरु निष्ठा इज द बैक बोन ऑफ भक्ति एंड ऑल काइंड्स ऑफ सक्सेस। जिसको गुरु नहीं है और जिसको गुरु निष्ठा नहीं है उसका जीवन बेकार का है, और वो भी सदगुरु उसका होना चाहिए तब, अनेक जीवन सफल नहीं हो सकता, मार्गदर्शन नहीं हो सकता। संसार का ये जो संसारी गुरु है वो कुछ भी भला नहीं कर सकते, कुछ भी भला है जो आत्मदर्शन करा करके भगवान के चरणों में प्रेम ला दे वो जथा। किसी ब्रह्मचारी का भी ये नहीं पूछना चाहिए, और ब्रह्मचारी भी यही कहेगा हमारे गुरु का ही नाम है, हमारा कोई संसारिक परिचय नहीं। और ब्रह्मचारी का आता है अपने पूर्वाश्रम का वो बतलाता है, समझो जब भी ब्रह्मचारी थे। लक्ष्मण जी से कहा शास्त्र के अनुसार आप तो शास्त्र जानते हैं, फिर भी ऐसा पूछते हैं, हमारे से बस गुरु वाल्मीकि के हैं, मैं यही जानता हूं। इसका फिर समय अपना परिचय कुछ नहीं किया, बड़े लजीत हुए। शाम भगवान के घर में आज बहुत देर हो गई, इन सबके कारण मैया उनके लिए प्रतीक्षा कर रही है पिताजी वाल्मीकि के आश्रम। उस समय में लक्ष्मण जब आए दोनों को अपनी गोदी में बैठा लिया, बोली बेटी आज बहुत विलंब है, तुम आप सुन लो कैसे आज तक से इतनी धूप देरी नहीं होती थी, विलंब नहीं होता था, कैसे विलंब हो गया। भैया एक बड़ी विचित्र बात हमने देखी, आज हम कोई एक राम राजा है अयोध्या के, तो हम आज उसकी सभा में पहुंच गए और उन लोगों ने हमसे रामायण वाल्मीकि का जो हमारे गुरु जी ने लिखा उसको कीर्तन करने के लिए, और हम लोग वहां कीर्तन कर सारी सभा के लोग रोने लगे। और अंत में हमने एक विचित्र बात देखा, वहां पर एक सोने की मूर्ति थी, वो मूर्ति कैसी थी ठीक तो होती है वो मूर्ति नहीं, तुम हमको मूर्ति में लेकर के बैठी और वो चुपचाप रहती, बस बोलना बाकी और बाकी सब कुछ तुम्हारी। ये सुनते ही बस सीता जी विलाप करने रोने लगी, आवेग जो आया ये राम ने हमको नहीं छोड़ा, एक राजा ने रानी को छोड़ा, राम ने अभी भी हमको अपने हृदय नहीं रखा है। कई जोर से रो रहे वे आपके आंसू उनको पूछने लगे, भैया क्यों रोती है सीता जी, क्या बताएं कि वही हमारे पति हैं, वही तो हमको छोड़ दिए हैं, क्योंकि राम उनकी पूजा करते हैं उस सीता जी की। सब सुन करके सीता जी एक समय विवश हो गए, पीछे से उनका मिलन हुआ। हमारा ये तात्पर्य है जो रामचंद्र जी ने जो कहा वहां नवदीप के एक स्थान में पंचवटी में, ये हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो सीता जी पूछ रही है बिना कारण हमको क्यों छोड़ देंगे और आप मेरी पूजा करेंगे, तो यही तो बात है। तो वो प्रेम के दो पहलू होते हैं, क्या होता है एक विलह और एक होता है मिलन। पहले मिलन होगा, मिलन में सेवा होगी आराध्य देव की, और किसी कारण से कुछ समय के लिए यदि भी छूट गए तो उसको जिसको जितना अधिक विलह होगा उसके लिए समझो जो प्रेम वहां पर उतना अधिक है। राधा जी को जितना कृष्ण के लिए विरह होगा जब मथुरा चले जाएंगे द्वारका, राधा जी को भी होगा, मैया यशोदा को भी होगा, नंद बाबा भी होगा, सखाओं को भी होगा, ललता विशाखा जी को भी होगा, किंतु राधा जी जैसा होगा कि नहीं होगा। वो राधा जी को समझाएंगी कितना मत रहो धारण करो, ये समझ क्यों धारण, वो क्यों समझाएंगी, उनका विरह उतना नहीं है जो वो पागल हो गई। सीता जी को भी दिया था किंतु राजा जी ज्यादा विरह नहीं था, जिसको मिलन में जितना किसकी सेवा करती है मिलन में आनंद है, उसको उतना ही विरह में वो उतना ही दुख होगा। तो यही रामचंद्र जी सीता जी को बतला रहे हैं, देखो प्रेम के दो पहलू है मिलन और विरह, प्रलंब और संभोग, ये दो बात है। ये दोनों रही जाने से जिसको विरह नहीं कभी कभी होगा तो वो फिर मिलन में जो आनंद है उसकी अनुभूति नहीं होगी, समझ रहे हैं कुछ। विरह में जैसे जसोदा मैया है उनकी गोदी में सब समय खेल रहे हैं कृष्ण, कुछ कुछ वो निश्चिंत हो गई है और पुतला आई और उनको दूध पिलाने के बहाने में आकाश मार्ग में लेकर के चली गई, और इसके बाद में किस प्रकार से पुतला के हाथों से जब रक्षा हुई तो अब उसको छोड़ेंगे नहीं, दिन रात उसको बच्चे को साथ में लेकर के रखते। इस तरह से जितनी लीलाएं हुई है उनकी उसमें प्रेम का नवीनीकरण होता जाता है, कैसे कृष्ण ऐसे मालूम होता है कि अब मरे अब मरे, अकाश उसने उनको निकल लिया। इसके बाद में क्या हुआ, ये वृक्षों को नीचे कृष्ण वो ओखल लेकर के जा रहे हैं, आकड़ों पेड़ गिर गया, जब उनके ऊपर निकल जाते तो क्या होता। अभी तक केवल अभी कितने वर्ष के थे, अरे वर्ष भी नहीं। तो इस तरह से ये प्रेम का नवीन कर्म होता है। कृष्ण मथुरा चले गए, ये किस लिए, इसके बाद में यदि मिलन होगा उनका आनंद बढ़ेगा, इसलिए मैं तुमको छोड़ दूंगा और तुम्हारी मुक्ति पूजा करूं, और इसके बदले में तुम एक मेरा अभी अवतार होगा चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उसमें क्या होगा, मैं संसार को छोड़कर के संन्यास लेकर के चला जाऊंगा, और तुम मेरी मूर्ति बना करके घर में तुम्हारा नाम होगा विष्णु प्रिया, और तुम मेरी मूर्ति को पूजेगे। जब महाप्रभु जी संन्यास ले लिया, कृष्ण ही है, किंतु अभी रूप थोड़ा सा बदल गया है, राधा जी का भाव और कांति लेकर के आए। जब वो चले गए जगन्नाथपुरी में तो ये क्या करती, उनकी मूर्ति बनाकर और उनकी पूजा करके उनसे बात करती और कैसे जीवन निर्वाह करती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम चावल की छलक देती और उसमें एक कण ले लेती एक, और ये उच्चारण करके अपने आंखों के आंसुओं से धो करके रख, से दो बात तक जितना नाम करती उतने चावल हो जाते, बस उसी की रसोई बनती थोड़ा सा, और रसोई देने के बाद में सची मैया उसको रोक देती, और सची मैया के भोजन कर लेने के बाद में और तब जो बच जाता उसको वो ग्रहण कर कितना लेती, किसी प्रकार से जीवन की बात करती और दिन रात प्रेम में तड़पती। इस तरह से तू मेरी पूजा करेगी और मैं सन्यासी होकर के मैं पागल होकर के और मैं कृष्ण कृष्ण करूंगा, इसलिए और उसी प्रेम में सारे संसार को डुबा दूंगा। जो छोटे भक्त जीव है यहाँ तक सिंह भालू जंगल में रहने वाले हैं, यहाँ तक कोई भी व्यक्ति है हमारे मुख से नाम सुन करके वो प्रेम में पागल हो, इस तरह से संसार में सारे जगह में महापुरुष जी ने संन्यास लेकर के प्रेम धर्म का और नाम का उन्हीं के आज कृपा से हम लोग यहाँ पर नाम कर रहे हैं, इस प्रेम को समझ रहे हैं और उन्हीं के लाइन में चल रहे। तो आप लोग भी चलिए इस जीवन में ये हो, हाय इतने जन्म गए और भगवान का दर्शन नहीं हुआ, संतों की कृपा नहीं हुई, हम इसकी दीर्घ की अनुभूति नहीं हुई, कैसे भगवान का मिलेंगे, जो हम साधन भजन कर रहे हैं इससे नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। जैसे मछली को पानी से निकाल दो और छत पर छत पर छत पर छत, ऐसे ही भगवान के लिए दिक्कत आएगी साधन भजन करते करते, श्रद्धा निष्ठा रुचि जब ऐसी स्थिति आएगी तब फिर जाकर के कहीं उनका प्रेम मिलेगा और उनको हम प्राप्त। इसलिए एक चीज रखी याद, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत भगवत भक्ति लाल ये मिलेगी कैसे, शुद्ध वैष्णव की कृपा से या भक्तों की कृपा से या उनमें जो प्रदान है गुरु की कृपा से। इसलिए सब जीवन का निवास जैसे तैसे करो, किंतु उद्देश्य ये है कि भगवान का भजन। एक व्यक्ति भगवान का नाम कर रहा था गुरु की सेवा से, उनकी कथाओं को सुनकर के धीरे धीरे उसको संसार के प्रति विरक्ति कुछ आई, ये बुरा है कि ठीक है। किसी व्यक्ति को भी भगवान की कथा सुनते सुनते मीरा आई जैसी विरक्ति हो जाए, ये गलत है कि ठीक है। भगवान का भजन करेगा नाम करेगा या करेगी और विरक्ति संसार से ना आए तो क्या समझो, अभी भजन ये ठीक नहीं। आप किसी को ऐसा यदि हो गया तो क्या समझो, सारा शास्त्र वेद उपनिषद शास्त्र रामायण पुराण सभी ये कहा ये ठीक है। एक कृष्ण प्रेम में पागल कोई हो गया मीरा जैसी, मीरा ने बहुत खराब काम क्या, अपने पति की शराबी की नहीं है, तो गंदा काम नहीं हुआ क्यों किया? पति को छोड़कर के क्यों है? पति को छोड़कर के भगवान का भजन होता है? हरे कृष्ण ही तो पति है। आज संसार में तुलसीदास जी खराब काम किया ना अच्छा काम किया, भगवान का भजन करते थे उसको छोड़ दिया। जनक भाई छोड़ा तो हमारे गांव वाले घर वाले जितने थे वहां के कुत्ते भी हमको दे करके भागते थे, घर तू ही भागते भजन हो जाए। माता पिता को छोड़ करके विवाहिता इंद्री और बच्चों को बिल मिलाते हुए छोड़ करके जाए तुम्हारा भजन होगा? सभी लोग उनके कहने का कुछ तात्पर्य कुछ है, उनकी बातें ठीक है कि जो शास्त्र कहते हैं भागवत पुराण रामायण वेद परिषद कहते हैं वो ठीक है, हमारे जो ऋषि महर्षि कहते हैं वो ठीक है, सब ठीक है। यदि किसी को जीवन में सुखदेव को स्वामी जैसा प्रेम हो जाए, नारद जी जैसा प्रेम हो जाए और संसार को छोड़ करके भगवान का भजन करने लगे, तुम्हारी संतानों में से कोई किसी का संतान भगवान का भजन हो करके प्रेम में अब जो छोड़ करते तो क्या करेंगे हम? आप आदर करेंगे ना उसको मारेंगे पीटेंगे? बुरा काम कर रहा है ना अच्छा कर रहा है? अगर इतना समझ करके भी यदि उसके प्रति यदि उसके समाज भेड़ कर तू जैसा व्यवहार करे तो सौभाग्यवान जी भगवान का भजन करे और भले नहीं आए और सब समय प्रसन्न रहे, जातना आत्मा भी प्रसन्न रहेगी। इसलिए संसार का ये मूल तात्पर्य भगवान ने मनुष्य से दिया है, इसलिए भगवान का भजन करो और तब से कहते ये दूसरे जन्म में ऐसी भक्ति हो जाए, इसलिए भक्तों का निरादर मत करो किसी भी स्थिति में। ये जीवन का एक में एक दिन संसार छोड़ना पड़ा, याद रखो अपने बच्चे को स्त्री को सबको और स्त्री को भी अपने पति और बच्चों को भी छोड़ करके खाली हाथ, खाली हाथ ये शरीर भी छूट जाएगा, याद रखो। इसलिए भगवान अपने जीव का से निर्वाह के लिए जो कुछ उचित है करो, सबसे प्रीति रखो कि प्रॉपर प्रेम करो और जो इस प्रेम को देता है ऐसी वृत्ति को लगा देता है उसके प्रति निष्ठा वही तुम्हारा माता पिता यथार्थ बंधु तो संसार में सुखी रहते। आज भी समाप्त कर उनकी रात हो जाएगी, इसलिए सब हम लोग कहा रहेंगे कल करोड़ बाद में रहेंगे, आप लोग आएंगे दूसरे के साथ सुनाएंगे और आप लोग भी जो अभी हरिनाम नहीं लिया है जल्दी से हरिनाम लेकर के साथ अपने गले में तुलसी माला लेकर के प्याज राशन मांस मछली छोड़ करके भगवान का और जिनकी जीवन में भी सुखी रहो
बता दो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण
स्थान रहना चाहिए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ये भगवान में, बहुत से लोग कहते हैं नाम मैं नहीं लेना चाहता, बहुत से भगवान, और संसार में बड़ी उनकी प्रशंसा है। ऐसे कोई भगवान यदि दिल्ली में आ जाए ना तो पुथल पुथल हो जाती है, सारी मिनिस्ट्री उसमें दौड़ जाती है, वाजपेयी तक भी पहुंच जाते हैं अपने को भगवान कहने वाले। किंतु भगवान यदि 11,000 वर्ष तक रहें, 20,000 वर्ष तक रहें, तो उनको रेख नहीं आएगी, सब समय किशोर मूर्ति रहती, दांत नहीं टूटता और किशोर जैसे दिखते हैं। ये भगवान तो बूढ़े हो जाते हैं, दांत भी टूट जाता है, फिर मर भी जाते हैं। इसलिए जो लगत में जो ये कहते हैं ये मैं भगवान हूं, खबरदार ऐसे भगवानों से सावधान, जो गिरिराज को उठा सकता। इधर में आ जाइए, जगह सामने ढोलकी के पास में आ, आपकी हारमोनियम नहीं आई ठीक, तो ऐसे भगवान से सावधान रहो जो गीता नहीं मानते, भागवत नहीं मानते, जो गीता भागवत नहीं मानते, रामायण नहीं मानते। क्या हो गया? तो जो जानते हैं वो करे, वो कैसे करेंगे? उधर में रख दिया है। अच्छा, फिर तो ऐसे भगवान को दूर से नमस्कार। कृष्ण ससरी किशोर जैसी मूर्ति में ही अपने धाम को चले गए। राम 11,000 वर्ष तक रहे और मुख की रेख नहीं आई, और अपने धाम में सारे अयोध्या वासियों को लेकर के चले गए। और क्या क्या किया? कृष्ण गोवर्धन को धारण किया, 20 हजम कर दिया। इन भगवानों को जरा बीच दो तो, आग पर बैठा दो तो क्या करते हैं? इसलिए लोग कहते हैं अंधाधुंध भेड़ के पीछे भेड़ जैसे मत दौड़। जिनका कोई वेदों से, शास्त्रों से, भागवत से, गीता से संबंध नहीं है, वो लाख कहें भगवान मत मान, उधर के पास में जाओ, मत जाओ। अभी दिल्ली में बड़ी भीड़ लग रही है, आस पास में हजारों स्वयं सेवक लगे हुए हैं, पानी पिलाया जा रहा है, बड़ी सेवा हो रही है, किंतु धर्म से, भगवान धर्म का या भगवान से या कृष्ण से या राम से कोई संबंध नहीं। मत पीछे दौड़ो। भेड़िया धसान जानती हो आप लोग? जानते हैं भेड़िया धसान? वो भेड़े मान ले कि 10,000 भेड़े चल रही हैं और एक नदी आ गई तो कोई भी भेड़ नहीं जाएगी, तो जो भेड़ को पालने वाला होता है वो एक भेड़ को उठा करके और बड़ी जोर से फेंक देता है उधर में, तो बैबै करती हुई उधर में चली, अब लाखों भेड़ उसमें कूद पड़ती है और चलती है। इधर में आ जाइए, इधर में जगह है, इधर में बहुत जगह है, उनको डायरेक्शन वहीं रहिए और लोगों को डायरेक्शन दीजिए उधर से यहां तो चले आए। हाँ, इधर में बहुत जगह है। तो अंधाधुंध आंख बंद करके चल रहे हैं उसके पीछे में नहीं चलना चाहिए, विचार करके देखना चाहिए हमारी संस्कृति के अनुकूल है कि नहीं। कुछ लोग का ऐसा धर्म है जो राधा जी के नाम पर, कृष्ण के नाम पर रख दिया है, किंतु राधा कृष्ण से कोई संबंध ही नहीं है, आप लोग समझिए इन चीजों, खबरदार उनसे कोई संपर्क मत, वो हमारे देश की संस्कृति ही नहीं है, हमारे देश की संस्कृति से बहुत अलग है। अतः राधा इत्यादि, राधा का नाथ स्वामी इत्यादि रख देते हैं, इन लोगों से सावधान रहें। हमारी संस्कृति और सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी है, बहुत, जिसमें नारद जैसे ऋषि, ब्रह्मा जैसे, शंकर जैसे, वैष्णव लोग, अनुभवी सब विद्वान और ये सब हो गए हैं, हम उसके लाइन में हैं, उस लाइन में रहना भारतीय संस्कृति, वो सब भारतीय संस्कृति नहीं है। राम आए एक, कृष्ण आए एक, और संसार में क्या नहीं कर दिया, इस तरह से समझिए इस विषय को। जब तक नहीं समझेंगे अंदर तो आप लोग भी दौड़ पड़ेंगे उधर। पहले ये देखेंगे ये गीता भागवत रामायण पुराण वेद मानते हैं कि नहीं, तो सीधे कह देंगे हम नहीं मानते। अच्छा मंदिरों में ठाकुर जी को राधा कृष्ण को मंदिर में जो है वहां मानते हैं कि नहीं, तो कह देंगे नहीं। समझिए कि हमारे भारतीय संस्कृति जो भगवान के शिव विग्रह को मूर्ति को नहीं मानते वो हमारे भारतीय संस्कृति के नहीं है। इन सब चीजों को समझें और वैसे ही आ सकता है। सुप्त भक्ति भगवान का नाम नारद जी से देखिए आरंभ हुआ, ब्रह्मा जी से आरंभ हुआ, चित्रकेतु महाराज जी और श्रीमद भागवत में इसका विवरण है, वेदांत में इसका विवरण है, उपनिषदों में इस सब का विवरण है। इसलिए जो इसको मानता है बस उसके साथ यमनीय लोगों से दूर रहिए। और ये भले ही हरिनाम दीक्षा नहीं है तभी भगवान का नाम लीजिए, बल्कि गणेश की पूजा भी अच्छी है उन लोगों से, कोटि गुण अच्छी है। शंकर जी की आराधना गणेश जी की भी आराधना उन लोगों से कोटि गुण अच्छी, क्योंकि वो वैदिक संस्कृति है, वो एक श्रेणी में आती है, उनको सबको सम्मान देकर के चलना चाहिए। ये लोग उनका भी आदर नहीं करते, जिस संस्कृति में माता पिता का आदर की बात नहीं उसको नहीं मानना चाहिए। ये सब को लेकर के चलना चाहिए। रामचंद्र जी दो मिनट कुछ बोलिए तो ऐसा बने जो उसका प्रचार भी करे, ये भी एक भक्ति है। गीता में कहा गया कृष्ण ने सुनाया और सुना करके कहा इसको सुन करके इसका प्रचार करो, ये भी एक भक्ति है। तो जो अच्छी चीज है, आजकल नकली चीजों का प्रचार देखो कितना, राजनीति इतनी गंदी, इतनी गंदी जिसका हिसाब नहीं, और उसमें करोड़ों लोग लगे हुए हैं राजनीति के प्रचार में झूठ बेकार का, और हम अच्छी चीजों का प्रचार हम लोग भी करें, चाहे महिला भक्त हो चाहे पुरुष भक्त, उसको समझिए और जितना समझ रहे हैं उसको दूसरों को भी दीजिए, उनकी सहायता भी, तब ये भक्ति बहुत जल्दी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि अपने ही बस रख लिया, उनको जितना जानते हैं भाई भगवान का भजन कर, इसी से हमें आप सुखी हो सकते हैं। भाई ये शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा अंदर है, भगवान सर्वत्र है, उसको देख नहीं पाते हैं, अभी भगवान तो है ही है, सारा विश्व का संचालन करते हैं, बड़े कृपालु हैं, आप उनका शरण, उनको रोज प्रार्थना की, इतना तो कर सकते हैं ना, इसी में शांति और सुख है। जो भगवान का भजन नहीं करते कभी भी सुखी शांति, आप कुछ नहीं कर सकते हैं भगवान का, एक बार कृष्ण नाम राम नाम कोई भी नाम भगवान का है, लाखों कोटि गोविंद नाम है दामोदर नाम है, इनमें कोई भी नाम हो आप सवेरे उठ कर बस इसी से ही आपका कल्याण हो जाए। अजामिल ने ऐसा किया था, प्रहलाद महाराज जी ने ऐसा किया, अभी महाप्रभु जी के लीला में महाप्रभु जी ने बाघ और सिंहों को भी हरिनाम करा दिया, उनको भी बदल दिया, इतना तो सहज रूप में कोई भी कह सकता है, ऐसे कहेंगे इसका ऐसे ही प्रचार। अभी हमारे श्रीमान भक्ति वेदांत माधव महाराज जी कुछ हरि कथा आप लोगों के सामने कुछ सहज रूप में सरल रूप में जो साधारण आदमी समझ सके भक्ति का के संबंध में, या जैसे लोगों का कल्याण हो इसके संबंध में, और वहां पर ऐसा सुंदर क्षेत्र बनाया कि मैं वहां जाकर के खूब प्रचार कर रहा। बहुत हरि कथा भी जानते हैं, वहां पर प्रवचन देते थे जैसे रामचंद्र इधर उधर देते, और बहुत योग्य व्यक्ति। मैं चाहता हूं कि हमारे संपर्क में जो ऐसे ही बने और सर्वत्र जो जहां है वहीं से प्रचार करे भगवान की भक्ति। दो शब्द बोलिए तो कैसे उन लोगों को बोलते थे जैसे वो आकर्षित हो, सब लोग ऐसा ही प्रचार करें और भजन भी कीजिए और बोलिए भी। चलो आ जाओ। रखने वाले, इसका पालन पोषण करने वाले और इसका विनाश करने वाले सबके जो मालिकों के भी जो मालिक हैं वो कृष्ण चंद्र है, यही भगवान है। इन्हीं से ही सब जितने अवतार निकले, तो इन भगवान के प्रति यदि आपकी सेवा की वासना होता तो उससे वो भक्ति कहेंगे तो नहीं कहेंगे, कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? हमारे तन की, मन की, वचन की, भावों की जितनी चेष्टाएं हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हो। फिर से समझो, हमारे तन की, मन की और वचन, और वचन से भी ऊपर भावों की जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, निगेटिव रूप में या पॉजिटिव रूप, वो सबको कृष्ण को प्रसन्न कर देंगे। निगेटिव में क्या, पहले निगेटिव को भी देखना है। ऐसा कोई कार्य न किया जाए जिसे कृष्ण को अप्रसन्नता हो, तो फिर भक्ति नहीं होगी। और दूसरी बात है, ऐसी चेष्टाएं होनी चाहिए जो कृष्ण को प्रसन्न। आप जुआ खेलते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं और भगवान का भी नाम करते हैं, तो ये भक्ति होगी नहीं होगी, इस चीज को समझ। इसलिए निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों रूप में होना चाहिए। ऐसी कोई चेष्टा न करो तन से, मन से, वचन से, भावना से, जो भक्ति के विपरीत हो, भक्ति के अनुकूल न हो, प्रतिकूल हो। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रतिकूल न हो। और दूसरी बात, अपने तन, मन, वचन की सामग्रिक संपूर्ण रूप से ये चेष्टा हो, इससे ये कृष्ण प्रसन्न हो, तो ये भक्ति के। किंतु इसके साथ साथ में कहा गया, किसी प्रकार के भी लौकिक, कोई भी परमार्थिक और लौकिक चेष्टा अपने स्वार्थ के लिए न करो, अन्नाभिलाषिता। अब इसको समझो, हमारे शास्त्रों में ध्रुव जी की कथा बहुत बतलाई गई। ध्रुव जी अपने पिताजी के राज्य पर, राजगद्दी पर बैठना चाहते थे, किंतु उसके पिताजी ने गोदी नहीं ली और वो रोता हुआ चला गया। मैया ने कहा, इसके लिए क्या रोता है, तुम्हारे प्रभु हैं, कृष्ण तुम्हारे प्रभु, तुम इसकी आराधना करो, उसे सब कुछ हो मिल जाए। रात में ही राज्य छोड़ करके चला गया हरि की आराधना करने के, और साथ ही साथ जब ये संकल्प लिया कि हम उनकी आराधना करेंगे, किंतु जानता तो है नहीं और राज्य चाहता है, तो नारद जी को भगवान ने भी मार्गदर्शन करो। ऐसे ही संसार में आप किसी प्रकार से दुखी होंगे और उस सुखी होने के लिए भगवान की कुछ उपासना करना चाहेंगे, तो भगवान कोई गुरु भेज देंगे, यदि आपकी वैसी इच्छा हो, संकल्प ऐसा हो। नारद जी आए, बालक को समझाना चाहिए, 5 वर्ष की उम्र है, तुम लौट जाओ, कहीं बाघ भालू न खा जाए, लौट जाओ घर, जीत नहीं करना, लेकिन तुम मारा नहीं। तो उसको मंत्र दिया, मंत्र माने क्या, भगवान को मंत्र के रूप में दिया। उसमें इतनी शक्ति होती है यदि सदगुरु कोई मंत्र दे, और उसके अनुसार में वो साधन करते, जल्दी बहुत जल्दी वो सफल हो जाता है। अब तपस्या करने लगा, उनको मंत्र दे दिया। पहले महीने में खाना पीना छोड़ दिया, भोजन नहीं किया, केवल जलपान किया, सूखे जो कुछ पत्ते और कुछ फल मिल गए ले लिया। दूसरे महीने में वो छोड़ दिया, केवल पानी पिया, वो भी 10 दिन के अंतर या कितने दिन का, कुछ दिनों के बाद वो भी छोड़ दिया, केवल हवा लिया, और वो हवा को भी छोड़ दिया, एकदम समाधि। 6 महीने ही भगवान की प्राप्ति हुई, वो भगवान ने उसको दर्शन जाओ तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, तुम्हारा कल्याण। जो भगवान अंतर ध्यान हो गए, भगवान का दर्शन का ऐसा फल हुआ, अरे हमने क्या किया। चिंतामणि जैसे सभी कुछ हमारी वो पूर्ण कर सकते थे, और हमने ये संसार का ये एक पर ले लिया है हमारा जीवन। भगवान ने कहा 36,000 वर्ष तक अपने पिता को ही राजगद्दी नहीं, संपूर्ण विश्व पर तुम शासन करो। मंगा था थोड़ा मिल गया बहुत, किंतु अब वो उसके लिए भी दुखी हो रहा है, जब मैंने क्यों मांगा, ये तो सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसने जो भगवान का मंत्र जपा, भगवान की सेवा की, आराधना की, किस लिए की, राज्य की लालसा। इसलिए भक्ति जैसा यह दिखता है, भगवान की आराधना की, उनका ध्यान किया, उनका मंत्र जप किया, किंतु ये शुद्ध भक्ति नहीं है। इस चीज को समझिए, ये भक्ति नहीं है, ये तो राज्य अपना मांगा और राज्य उन्होंने दे दिया, इसे भक्ति नहीं है। कैसी होनी चाहिए, किसी तरह का लौकिक लाभ स्वार्थ उसमें न हो हमारी भक्ति। और भी हम देखते हैं बहुत लोगों का श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, पुराणों में आया है, ऐसे ही लोगों ने, किसी ने धन के लिए, किसी ने पुत्र के लिए, भगवान की आराधना किंतु पुत्र के लिए, किंतु अंत में पुत्र भी मर गया, नारद ऋषि आए, ज्ञान तत्व उपदेश दिया, अंत में ये शुद्ध भक्ति नहीं। इसलिए भक्ति को करीब करीब 2-3 भागों में विभाग किया जा सकता है। एक भक्ति है, एक भक्ति का आभास है, जैसे बतलाया ना ध्रुव जी की भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं थी, कुछ स्वार्थ के लिए किया। वैसे ही कुछ लोग भगवान की उपासना करते हैं, किंतु किस तरह से, जैसे सुंदर गुण है, दयालुता है, परोपकारता है, दीन ही होना है, सहिष्णु बनना है, ये साधारण गुण नहीं है, मन को वशीभूत करना है, कंट्रोल करना है, ये सब गुण है। ये गुण यदि भक्ति के साथ रहे तो भक्ति है, और भक्ति नहीं है और ऐसे ही रहें, सदाचारी रहें, तत्वज्ञानी भी रहें, और सब उनमें गुण हो, बड़े सहिष्णु हैं, ये भक्ति नहीं। भक्ति के साथ रहने पर इसको भक्ति कहते हैं, इसलिए इसको संग सिद्धा भक्ति कहते हैं, ये भी भक्ति का आभास, ये भक्ति नहीं। शुद्ध भक्ति क्या है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, उनकी महिमा, उनके भक्तों का चरित्र इत्यादि का जो कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, स्मरण करते हैं, वंदना, पाद सेवन इत्यादि ये जो करते हैं, ये भक्ति है। किंतु सब कामनाओं को दूर करके ज्ञान और कर्म के द्वारा ही भक्ति मिलती है, इस भाव को भी छोड़ो, और एकमात्र कृष्ण के लिए ही हो, इसलिए इस तरह से यदि करें तो ये भक्ति हो। इस भक्ति को जरा और अच्छी तरह से समझो, भक्ति की बहुत सी अवस्थाएं हैं। जैसे 5 को मान लिया गया, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेम पर भक्त, प्रेमातु भक्त। ज्ञानी भक्त कौन है, पहले भक्त समझिए, जो तन मन विचन वचन से सब प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं। जैसे इस जगत में अम्बरीश महाराज, भागवत में दिया गया, साधारण जगत में बहुत कम इसका उदाहरण मिलेगा। अम्बरीश महाराज के पृथ्वी के राजा होते हुए भी अपने हाथों से ठाकुर जी का मंदिर धोते थे, अपने हाथों से पुष्प चयन करके लाते और ठाकुर जी का अर्चन इत्यादि का। राज्य चलाते थे उनके राज्य कर्मचारी, मंत्री और ब्राह्मणों को रख दिया था, वो करते थे। हम क्या करते हैं, हम नौकर रख करके ठाकुर जी की पूजा करते हैं और नौकरी अपना बिजनेस वाणिज्य सब करते हैं, ये भक्ति का उल्टा हो गया। वो राज्य का सब कुछ संचालन करते थे ब्राह्मणों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, और ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी को साष्टांग प्रणाम करना, जीवा के द्वारा भगवान का सब समय कीर्तन, गोविंद दामोदर भागवती सत्संग जीवा से कीर्तन का। पेरेंट्स से क्या करते, धाम में जाते, वृंदावन मथुरा में रहते थे, वृंदावन में आते थे, उनका राज्य उज्जैनी में था किंतु एक सीट अपना बना रखा था, वहां आते थे, वृंदावन की परिक्रमा करते, धाम की परिक्रमा करते, हाथों से वैष्णव की सेवा करते, ठाकुर जी की सारी सेवाएं अपने हाथों से करते, पंखा झलाते, भोजन बनाते, उनकी स्त्री भोजन बनाती, और मस्तिष्क से क्या करते, ठाकुर जी को प्रणाम करते, भगवान का अर्पित ही चीज कोई चीज लेते, दूसरा कोई भी चीज नहीं लेते, भगवान को अर्पित किया उसको ले, वो अमृत से भी बढ़कर के महा महा प्रसाद बन जाता है, उसकी सेवा इस तरह से करते, अपने समस्त चेष्टाओं से भगवान की सेवा कर, ये शुद्ध भक्त। ज्ञानी भक्त वो है, भक्त तो है और भगवान का स्वरूप जानता है, जैसे नारद जी हैं, विषम पितामह जी हैं, वो सुखदेव गोस्वामी हैं, सनक सनंदन ऋषि हैं, कृष्ण को देखेंगे ये लोग तो क्या कहेंगे, यशोदा जी की गोदी में बैठे हैं आज, यशोदा जी ने अपनी गोद से कृष्ण को हटा दिया, गंदे कपड़े कर देता है, बहुत उत्पात मचाता है, तुमको गोदी में नहीं लेंगे, और नारद जी देखते हैं कि कृष्ण मचल रहे हैं गोदी में चढ़ने के लिए, रो रहे हैं, और यशोदा मैया क्या कहते, दूरहट दूरहट, नारद जी कहते देखो तो ये परब्रह्म को ऐसा कर रही, उनको आश्चर्य हो रहा है। विषम पितामह जी बाणों के साथ में कृष्ण से युद्ध कर रहे हैं, सोचते क्या है, ये परब्रह्म है, ये बाण उनको नहीं लग सकते, उनका चिन्मय शरीर है, इसलिए बाण उनके पास में स्पर्श नहीं कर सकते हैं। प्रहलाद महाराज जी क्या सोचते हैं, प्रहलाद जी देखते हैं कि ये सर्वव्यापी हैं, भगवान हैं, इनको भूख प्यास लगती नहीं है, इनके पैर थकते नहीं है, तो वो क्या सेवा करेंगे, कर सकते हैं कुछ, इनको भूखी नहीं है, प्यासी नहीं है, उसके क्या सेवा करेंगे, नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे लोगों को ज्ञानी भक्त कहते हैं। इसलिए हमारे भीष्म पितामह जी कृष्ण से युद्ध किया, सोचा मारते हैं बाण, कहते कि कृष्ण के शरीर में लगेगा नहीं, ये जो दिख रहा है ये बाण जा रहे हैं, ये सचमुच में उनको प्रवेश नहीं करते हैं, ये कुछ माया का प्रभाव से ऐसा है, इसलिए परम भक्त हैं किंतु ज्ञानी भक्त, अर्जुन ऐसा नहीं कर सकते, हनुमान जी ऐसा नहीं कर सकते, हनुमान क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। सीता जी को रावण चोरी करके ले गया, उन्होंने क्या की, एक छलांग मारी और लंका को जला करके अग्नि में भस्मीभूत कर दिया कि लंका को, और सीता जी से कहे, बोले कि हमारे पीठ पर चढ़ो और मैं अभी तुरंत उस पार ले जाऊं। सीता जी ने कहा जी ऐसा बेटा ऐसा मत करो, वो हमारे स्वामी को ही लाओ और वो दंड दे इनको और तब हमको ले चले, हम ऐसे नहीं चले। हनुमान जी ने ऐसा, हनुमान जी क्षण क्षण में राम की सेवा करते हैं, समझते हैं कि हमारे प्रभु को भूख लगती है, कभी कभी ये भी होता है ये भगवान है, किंतु अधिकांश रूप में वो सेवा करते हैं, इनको भूख उनके पैर भी दबा देते हैं, चलते चलते थक जाते हैं, तो युद्ध में थक जाते हैं। उनके लिए परकोटा बना करके अपने पूछ से ही उनकी रक्षक किला बना देते हैं। अब जब जरूरत होती है किसी चीज की, झट उनकी सेवा करते हैं, दिन रात सेवा में जुटे रहते। इस तरह हनुमान जी इनसे बहुत श्रेष्ठ है। प्रहलाद महाराज जी ऐसी सेवा नहीं कर सकते, भीष्म जी नहीं कर सकते, सनक सनंदन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके भक्त जो वो इष्ट देव पूर्ण रूप में ब्रह्म है, उनको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, उनको कोई थकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या सेवा वो करें। किंतु हनुमान जी का, किंतु हनुमान जी सेवा करने पर भी प्रेमी भक्ति तो है उनमें, प्रेम भक्त है, किंतु राम के पलंग के ऊपर में नहीं बैठ सकते। कोई सुंदर के मिलिए तो वो अपना जूठा राम को नहीं दे सकते, उनको उसके रूप में ग्रहण नहीं कर सकते। और यही पांडव लोगों को देखिए, कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा जी की शादी अर्जुन से कर दी, उनके शाले बन गए, एक साथ में एक पलंग पर सोते हैं, भोजन करते हैं, एक थाल में भोजन करते हैं। और अर्जुन कहेंगे कि हमारा रथ बीच में ले चलो, सेनाओं के बीच में वो ले जाएंगे, जो अर्जुन कहेंगे वही करेंगे। इसलिए उनसे ये श्रेष्ठ, अपना जूठा भी दे देंगे, किंतु सब समय नहीं। जो ही वो विराट रूप देखेंगे, कहे हमने ये जो सखा कहा है ये भूल की है, हे प्रभु आप रक्षा कीजिए, आप जगत के प्रभु हैं, मैं एक तुच्छ जीव हूं, वो सब भक्ति निकल जाएगी उसे। इन्हें कभी कभी ऐसा हो जाता है। और जसोदा मैया को भी स्वरूप दो दो बार तीन तीन बार दिखलाया कृष्ण ने, किंतु उन्होंने देखा जिसको किसी ने जादू कर दिया, टोना कर दिया, ये भगवान नहीं, ये साधारण हमारा बालक है। इसलिए उन लोगों का प्रेम इसे बहुत अधिक है। इन चीजों को समझना चाहिए। भक्ति का तत्त्व क्या है कि घर में रहते थे कृष्ण, और बड़े बड़े परमहर्षि लोग वहां पर जाते थे, द्रौपदी और नारद जी को लीजिए, नारद जी यदि घर में आए तो द्रौपदी क्या करेगी, उनको प्रणाम करके चरणों की धूली लेगी, किंतु नारद जी क्या कहें देखेंगे, ये देखने कृष्ण इसके लिए आते हैं और इसको सखी कहते हैं और जो कुछ कहती है वही मानते हैं, और इनके घरों में रहती हैं और वो रसोई पकाती है, तरह तरह से उनकी सेवा करते हैं, नारद जी कर सकते हैं। इसलिए असल में नारद जी से भी किसी किसी स्थिति में इसकी भक्ति अधिक है। इसलिए पांडवों की बहुत अधिक भक्ति, किंतु पांडव इतने योग्य नहीं है जो कृष्ण को ब्रज में भेज दें। भेजेंगे किसको, उद्धव को भेजेंगे। ये उद्धव कृष्ण के मंत्री भी हैं, सेनापति हैं, जनरल हैं, उनके शिष्य भी हैं, परामर्शदाता भी हैं, सब रूप में कृष्ण के बिना ये रह नहीं सकते, इसलिए इनको भेजा। ये जाओ गोपियों को समझाओ, समझाओ माने किस लिए, जाओ जिस स्कूल में मैं प्रेम का पाठ पढ़ाए वहीं पर जाकर के तुम प्रेम का पाठ पढ़ो, और तब फिर आओ तो तुमसे प्रेम की दो चार बातें करेंगे, नहीं तो गोपियों को तुम समझ नहीं सकता, हमारे प्रेम को नहीं समझ सकता। जब उद्धव जी ब्रज में थे, गोपियों से बहुत कुछ सोचा समझा, अंत में जब लौटने लगे तो गोपियों से कहा अब मैं ब्रज में जा रहा हूं, मैं गोपियों से क्या कहूं, कृष्ण से क्या कहूं। जब दो चार बार कहा तो राधिका जी ने कहा देखो ये मत कहना कि ब्रज की गोपियां तुम्हारे विरह में बड़ी तड़प रही हैं और बड़ी दुखी हैं, ये मत कहना, कहना जो गोपियां तुमको भूल गई है और बड़ी सुखी हैं तुमको भूल करके। यदि वो सुनेंगे ये गोपियां तुम्हारे विरह में तड़प करके प्राण छोड़ रही हैं, सारा ब्रज बड़ा दुखी है, तो कृष्ण बड़े दुखी हो जाएंगे और हो सकता है कि अपने शरीर को भी छोड़ दे, जीवन छोड़ दे, इसलिए मत कहना, धीरे धीरे यहाँ की बातें उनको बतलाना, एक बार में मत बतलाना। जैसे पुराना कपड़ा होता है भीग गया तो दो समय ऐठो क्या होगा, फट जाएगा। इसलिए कृष्ण का हृदय बड़ा कोमल है, हम लोग जानती हैं, हम लोगों से हृदय से भी कोमल। इसलिए ब्रज दुखी है ये एक बार में मत कहना धीरे धीरे, और कहना जो गोपियां बड़ी सुखी हैं आपको भूल चुकी। कृष्ण हम लोगों से लाखों गुना वो अधिक कोमल स्वभाव, तुम नहीं जानते। तब उद्धव जी ने समझा जे कृष्ण संपूर्ण रूप से ब्रज में है, ये मथुरा में और द्वारका में नहीं है। ये तब उनका प्रेम, गोपियों का प्रेम निराला है, कृष्ण उसके प्रसिद्ध। इसलिए जितनी भी भक्त हैं उन सब में गोपियां सबसे श्रेष्ठ मानी गई। तभी यदि नारद जी, सुखदेव गोस्वामी या कोई साधारण ब्राह्मण भी भक्त वहां पर पहुंच जाए तो सब उनकी चरण की धूली लेंगे। इतना ही नहीं, यशोदा मैया उनकी चरण की धूली लेकर के कृष्ण के शरीर में लगा देंगे, ये हमारे बेटे का कल्याण। ये भक्ति सर्वोत्तम है, शास्त्र अनुमोदित। श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रेम भक्ति को देने के लिए आए हैं। सबसे पहले ये समझो जो कृष्ण सर्वेश्वरेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, किंतु जब तत्व जब ठीक आ जाए तो रूप गोस्वामी के विचारों के अंदर में आकर के इस चीज को भी भूलना होगा जो कृष्ण भगवान है, तब वो प्रेमा भक्ति ब्रज की भक्ति आएगी। ब्रज का कोई भी व्यक्ति ये नहीं मानता जो कृष्ण भगवान है, नहीं तो उनका ऐसा भक्ति नहीं हो सकता। इसलिए ब्रज की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई। आप लोग ऐसे ही भक्ति करने की चेष्टा करें। विदेशों में भी हम लोग प्रचार में जाते हैं, ये सब बातें कहते हैं, लोग बड़े प्रसन्न होते हैं और हजारों की समय लाखों की संख्या में इन चीजों को ग्रहण करते हैं। आप लोग ये शुद्ध भक्ति को ग्रहण करने की चेष्टा। कहां से आरंभ होगी भक्ति? गुरु जी से हरिनाम दीक्षा लेकर भगवान का नाम करो। कलयुग में अर्चन से नहीं होगा, पूजन से नहीं होगा और किसी दूसरे उपाय से नहीं होगा। सरल सहज रूप में जो जहां है अपने स्थान पर भगवान की कथाओं को सुने और भगवान का नाम करें। वो भी नाम कौन सा? हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम। इसमें भगवान कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति दे दी है, नाम में सारा रस है। यदि अच्छी तरह से इसको गुरु के अनुगत्य में भजन किया जाए तो इसमें एक एक नाम में भगवान की सारी लीलाएं आपको दिख पड़ेगी। प्रेम में मत हो जैसे महाप्रभु जी, उनके परिकर लोग रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास हरिनाम करते थे, वो दिन रात भूल जाते और उनकी लीलाएं सब उनके हृदय में स्फूर्ति हो जाती, चित्त द्रवित हो जाता, आंखों से आंसुओं की धारा पर पुलक रोमांच हो जाता। आएगी दशा जब जब संसार की सारी रिक्वायरमेंट जब दूर हो जाएगी, अभिलाषाएं दूर हो जाएगी और इस रूप में धीरे धीरे हम भजन करेंगे जरूर होगा, किंतु समय लग सकता है। तो आप लोग भगवान पर विश्वास कीजिए, भक्ति पर विश्वास कीजिए, नाम पर विश्वास कीजिए, हरि कथा सुनिए और इन बातों को दूसरों को भी प्रचार कीजिए, और जो जो नाम इत्यादि है सब लोग कीजिए विश्वास के साथ में। गुरु जो मंत्र देते हैं उसको श्रद्धा पूर्वक कीजिए। यदि जिस मंत्र से नारद जी ने दिया, ध्रुव जी ने थोड़े दिनों में 6 महीने में प्राप्त कर लिया, क्योंकि उस समय शरीर में शक्ति होती थी, बिना खाए पिए रह सकते। कलयुग में तो यह संभव नहीं। इसलिए सरल सहज रूप में भगवान का नाम कीजिए, किंतु सांसारिक अभिलाषाओं को दूर कीजिए, आसक्ति को और मोह को दूर कीजिए धीरे धीरे धीरे, और किसी तरह से नाम कीजिए, बहुत ही जल्दी आप लोगों का कल्याण। आज यही तक मैं तो आपको गौर प्रेमानंद दीजिए कृष्ण।